कामिनी, मेरे वो कफलिंग्स कहाँ हैं?
ड्रेसिंग टेबल पे रखे, अभी लाती हूँ।
बबली,
बबली क्या हुआ? क्या हुआ बबली? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है।
क्या हुआ?
परेशानी की कोई बात नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई पैर में।
कितनी बार कहा है तुमसे कि तेज गाड़ी मत चलाया करो, पर सुनती कब हो?
आज से इसका गाड़ी चलाना बंद कर दो।
पैर इस पे रख लो, आराम मिले। एंड डोंट वरी, यू विल बी ऑलराइट। ओके सर,
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें तो चोट लगी है।
हाँ, वो कार उठाते समय जरा सा हाथ छिल गया।
हाथ छिल गया? कितना खून निकल रहा है देखो। बैठो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। रामू,
रहने दीजिए, मैं चलूंगा।
रामू जरा फर्स्ट एड बॉक्स ले आना।
बैठो।
बेटे, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, कह रही हूँ तो सुन लो। बैठो।
ये लीजिए बीबी जी।
बस बेटे, हो गया।
थैंक यू। जरा ठीक से साफ कीजिएगा, वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं।
नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम जख्मी हो।
देखो बेटे, बैंडेज रोज बदलवा लोगे तो जख्म जल्दी भर जाएगा।
मेरे जख्म जल्दी नहीं भरते।
टेंडर भरने की आखिरी तारीख इस महीने की 18 तारीख है। ऑलराइट जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।
सुना?
यस सर।
इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा।
सर, हमारी कंपनी के मुकाबले में कौन आ सकता है?
एक आदमी की फिक्र है मुझे, विजय कुमार।
यू आर राइट मिस्टर आरके गुप्ता। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझी को मिलेगा।
ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि यह भरोसा कितना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से भंडारी जैसे चोर नौकरों को निकाल दिया है जो मेरे साथ बेईमानी कर सकते थे।
मिस्टर आरके गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी।
तुम मुझे अपनी तरह बेईमान समझते हो?
नहीं, मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता हूं मिस्टर आरके गुप्ता। ये बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। खैर, मिस्टर आरके गुप्ता, मुझे बेईमान कहने से पहले झांक करके देखिए अपने बीते हुए दिनों को। हो सकता है इतना अमीर बनने के लिए आपने भी कभी किसी के साथ कोई बेईमानी की हो, किसी को धोखा दिया हो सकता है आपने भी कभी इतनी दौलत कमाने के लिए अपने जमीर अपने जज्बात का सौदा किया।
What the hell do you mean by that? तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये दौलत, ये पोजीशन, ये इज्जत अपना जमीर अपने जज्बात बेचकर हासिल किए? अभी तुमने देखा ही क्या, यहां जमीर और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। मैंने दौलत ये पोजीशन हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से, इसलिए कि मुझ में हिम्मत थी, हर कीमत पर आगे बढ़ने की हिम्मत। और अगर तुम इस हिम्मत को जमीर और जज्बात का सौदा करना कहते हो तो मुझे तुम्हारी अकल पर रहम आता है।
लगता मैंने आपकी किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया।
तुम कहना क्या चाहते हो?
जो कहना चाहता हूं मिस्टर गुप्ता वो भी कहूंगा, लेकिन सही बात सही वक्त और सही मौके पर की जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है, और मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हां, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल जाएगा।
सुना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट विजय कुमार को नहीं लेने दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा, मुझे।
कुछ भी हो जाए गीता, ये काम शांति कंस्ट्रक्शंस के अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये एक छलांग एक जस्ट मुझे दूसरों से मिलवा के पहुंचा देगी।
गीता, ये मिस्टर वर्मा किस टाइप के आदमी है? मेरा मतलब है अगर उन्हें कुछ पैसे दे दिला करके।
नहीं विजय, नहीं, वर्मा साहब बहुत ईमानदार आदमी है। तुमने अगर बातों बातों में कहीं उन्हें इशारा भी दे दिया तो बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाएगा।
तुमने कहा था दुनिया में हर आदमी बिकाऊ नहीं होता।
विजय, मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो। मैं जानती हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने से तुम्हें लाखों का फायदा होगा, लेकिन दौलत तो तुम्हारे पास आज भी बहुत है। क्या तुम खुश हो?
तुम समझती हो मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा हूं, दौलत के लिए कर रहा हूं? इधर आओ। हाँ, मेरी मां की तस्वीर तो तुमने कई बार देखी है, आज उसकी कहानी भी सुन लो। मेरी मां बहुत गरीब औरत थी गीता, और इस जुर्म के लिए दुनिया में उसे किसी ने माफ नहीं किया। यह गरीबी एक ऐसा दाग था उस पर कि एक दिन दौलत के लिए एक ऐसे इंसान ने उसे छोड़ दिया जिसको वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी, और उस दिन मेरी मां पूरी कंगाल हो गई गीता। लेकिन वो मरी नहीं गीता, इसलिए वो मुझे जन्म देना चाहती थी। कितना दुख, कितनी जिल्लत सही होगी मेरी मां ने मुझे पालने के लिए, कौन जानता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी है मैं जानता हूं उसकी आत्मा हर दिन हर पल मुझे देख रही है। और मैं अगर अपनी मां का बेटा हूं, अगर मैं अपनी मां का बेटा हूं गीता, तो एक दिन उस आदमी की सारी दौलत छीन लूंगा जिसने एक दौलत के लिए मेरी मां से उसकी खुशियां छीनी थी। तुम समझती हो कि मैं रुपया कमा रहा हूं? नहीं गीता, मैं किसी से अपनी मां के आंसुओं का हिसाब ले रहा हूं।
विजय, मैं उस आदमी को जानती हूं।
नहीं, उसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता।
गुप्ता साहब, इस कॉलोनी पर तो हम में से कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं।
गुप्ता जी, हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए।
मिस्टर मेहरा, इस कॉलोनी पर मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाई है, आप कोई अकेले रिस्क नहीं ले रहे। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए हैं और लाखों कमाए हैं,
अगर हमने कभी लाखों कमाए हैं तो इसलिए नहीं कि एक दिन में लाखों गवा दे। आपने कॉलोनी बनानी है तो बनाइए, मगर हमारे पैसे वापस कर दीजिए।
देखिए, हमारे और आपके जो पुराने बिजनेस रिलेशंस हैं, मैं उनकी वजह से इतनी बातें कर रहा था, वरना पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल आप सबको अपने अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। सुना?
जी सर।
कल इनके पैसे लौटा देना।
यस सर।
अच्छा गुप्ता जी, हम चलते हैं।
लेकिन सर,
मैं जानता हूं सुना, बैंक में पैसा बहुत कम है। सेठ जमनादास को फोन करो, कहो फौरन पैसे भिजवा दें।
सर, जमनादास ने खुद सुबह फोन किया था, मेरे साहब की तरह उन्हें भी अपना पैसा वापस चाहिए।
सेठ जमनादास भी है, जमनादास भी है। देखा आप लोगों ने, ये वही लोग हैं जो नोटों की गड्डियां लिए हाथ जोड़े मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब जरा सा बुरा वक्त आया मेरा तो अपनी जात दिखाने लगे सब।
सर, इन्हें क्यों इल्जाम देते हैं? जितने भी लोगों ने हमारी कॉलोनी में पैसा लगाया है या मटेरियल दिया है, सीमेंट वाले, ईंट वाले, एक एक आदमी अपने पैसे के लिए तकाजा कर रहा है।
कहते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ये चूहे इतना नहीं जानते कि मैं डूबने वाला जहाज नहीं हूं। एक एक के मुंह पे उनके पैसे फेंकूंगा मैं। जगदीश, मार्केट से जितना भी पैसा सूद पे मिल सकता है ले लो, और अगर जरूरत पड़े तो ये मकान भी गिरवी रख दो।
मेहता, यह सभी हो, वो सारी हुंडियां, वो सारे कर्जे के कागजात जिस पर मिस्टर आर के गुप्ता के दस्तखत हों, शहर के हर सेठ हर साहूकार से खरीद लो।
विजय, मैं चलूं?
थोड़ी देर और रुक जाओ गीता, आज दिल बहुत घबरा सा रहा है। तुम चली जाओगी तो अकेलेपन का एहसास और बढ़ जाएगा।
तुमने हमेशा अकेले रहना पसंद किया, कोई इंसान इस तरह नफरत के सहारे जी नहीं सकता। कभी किसी से थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ी सी मोहब्बत मांग कर तो देखते।
गीता, आज मैं बहुत सी दोस्ती और बहुत सी मोहब्बत तुमसे मांगता हूं।
हेलो गीता।
हेलो शेखर।
कल बबली की शादी है, डैडी इस शादी में शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि शादी उनके घर के बाहर उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि कल तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर बाप ना आ सके तो कन्यादान बड़ा भाई करता है।
मैं आऊंगा शेखर।
मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।
मेरे जख्मों में नमक छिड़कने आए हो?
नहीं गुप्ता साहब, आपके जख्मों पर नमक तो वही छिड़क रहा है जिसने आपको जख्म दिए। शायद आप नहीं जानते कि आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी इस वक्त विजय कुमार के साथ है।
विजय कुमार के साथ? और तुम मुझे इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो?
जी नहीं, मुबारकबाद तो मैं आपकी बेटी की शादी की देने आया हूं, जो असल में विजय कुमार ही करवा रहा है। भंडारी कहीं से खबर निकाल के लाया है कि कल लगन मंडप में आपकी बेटी का कन्यादान भी विजय कुमार के हाथों ही होगा।
शट अप!
मुझे भी बहुत तकलीफ हुई ये सब कुछ सुनकर, मगर ये समझ में नहीं आता कि इस कमीने आदमी ने आपके घर वालों पर क्या जादू कर दिया है। यानी विजय के बहकावे में आकर आपके घर वाले आप ही के दुश्मन हो गए। कमाल है,
मेरे होते हुए मेरी बेटी की शादी विजय करवाएगा, मेरे होते हुए मेरी बेटी का कन्यादान। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब वो मुझे जलील करने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं।
कीमत तो तय हो सकती है, एक बार हमें कह के तो देखिए गुप्ता साहेब।
तुमने कहा था बलवंत, इस कांटे को तुम मेरे रास्ते से निकाल सकते हो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
5 लाख। मैं ये शादी रुकवा दूंगा और रहा विजय कुमार, उसे
खत्म कर दो उसे। वो आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए।
नहीं बचेगा। आप इत्मीनान रखिए गुप्ता साहेब, विजय कुमार अब जिंदा नहीं बचेगा।
तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जितना बर्बाद कर सकते थे कर चुके, अब क्या लेने आए हो? तुमने मेरा बरसों का जमा बिजनेस खत्म कर दिया, पाए पाए के लिए मोहताज कर दिया तुमने मुझे। तुमने मेरी घरेलू जिंदगी में भी जहर घोला। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से।
नहीं मिस्टर आर के गुप्ता, अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। जिंदगी के दोराहे पर जो रास्ता आपने चुना था, उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन आदमी अपने आप को अकेला ही पाता है।
तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? कौन सा रास्ता चुना था मैंने? तुम्हारी यह बकवास मेरी समझ से बाहर है।
हाँ यह आपकी समझ से बाहर है, इसलिए कि यह बिजनेस नहीं है। हर वो बात जो बिजनेस ना हो आप नहीं समझ पाते मिस्टर आर के गुप्ता। शायद इसीलिए आप नहीं समझ सके उस औरत का दिल, उस औरत का प्यार, उस औरत की मोहब्बत, क्योंकि वो सब बिजनेस नहीं था।
ये तुम किसकी बात कर रहे हो?
मैं शांति की बात कर रहा हूं मिस्टर आर के गुप्ता। वही शांति जिसके प्यार को आपने अपनी जिंदगी से किसी खोटे सिक्के की तरह निकाल कर फेंक दिया। वही शांति जिसके मोहब्बत भरे दिल पर पैर रखकर आप कामयाबी के रास्ते पर आगे चले गए। वही शांति जो इतनी खुददार थी कि उसने आपसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्या अधिकार था तुमको मिस्टर आर के गुप्ता?
ये सब तुम कैसे जानते हो?
मैं सब कुछ जानता हूं मिस्टर आर के गुप्ता। उसकी तन्हाई और उसके दिल का एक एक जख्म, उसकी बदनामी और उसके माथे का एक एक दाग, उसकी गरीबी और उसके आंचल का एक एक पैबंद, मैंने सब कुछ देखा है और मुझे सब कुछ याद है। आपके हाथों मर तो वह पहले ही चुकी थी, लेकिन चिता उसे 25 बरस बाद नसीब हुई और उस चिता की आग आज भी मेरे दिल में दहक रही है, इसलिए कि मैं उस अभागिन शांति का बेटा हूं मिस्टर आर के गुप्ता, और आप मेरे नाजायज बाप हैं। यह कितना अजीब इंसाफ है किस्मत का। एक दिन दौलत के लिए आपने मेरी मां को छोड़ा था और आज उसी दौलत ने आपको छोड़ दिया। ये देखिए, यही है वो दौलत। आपकी तरफ से मेरी मां को बदनामी और गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिला मिस्टर गुप्ता, लेकिन आज मैं अपनी मां की तरफ से आपको आपकी सारी दौलत वापस करता हूं। आज आपके पास आपकी सारी दौलत सही, लेकिन आपसे बड़ा गरीब मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
शायद यही मेरी सजा है। आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरी माफी सुनने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं हो। कैसे अंधों की तरह मैंने गुजारी है ये जिंदगी। इस अंधेपन में मैंने तुम्हारे बेटे को, अपने बेटे को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं शांति, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं शांति, माफ कर दो मुझे।